कल
जगन्नाथपुरी धाम में भगवान श्री जगन्नाथ, श्री बलभद्र और श्री सुभद्रा देवी, इनके रथ यात्रा का महामहोत्सव होगा। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष के द्वितीय तिथि पर हर वर्ष ये महोत्सव मनाया जाता है। अनादिकाल से मनाया जा रहा है ये महोत्सव। कोई गणना नहीं कर सकता कि कितने साल हो गए। इस दिवस के पहले दिवस गुंडीचा मंदिर का मार्जन होता है। जब रथ यात्रा निकलती है, जगन्नाथ भगवान, बलदेव भगवान और श्री सुभद्रा देवी, इनको तीन अलग अलग रथों में बिठाया जाता है और तीनों रथ हजारों की संख्या में भक्त खींचते हैं। जगन्नाथ मंदिर से रथ लिए जाते हैं 2 किलोमीटर दूरी पर गुंडीचा मंदिर में। गुंडीचा मंदिर ये इंद्रदुम्न राजा के रानी, इनके पीछे ये रखा गया है। कहा जाता है कि बहुत सालों पहले ये जगन्नाथ मंदिर का निर्माण राजा इंद्रद्युम्न ने किया था। आप सब वो कथा जानते हैं। पिछले साल रथ यात्रा में वो नाट्य लीला भी हुई थी, हमारे भक्तों ने प्रस्तुत की थी बाहर पंडाल में। बहुत प्रसिद्ध कथा है। तो उसको तो बीते, उस घटना को बीते बहुत साल हो गए, हजारों हजारों साल हो गए। तो उस जमाने से ये प्रथा चलती आ रही है। और कहा जाता है कि राजा इंद्रद्युम्न, इनकी पत्नी का नाम था गुंडीचा। जब तीनों रथ गुंडीचा मंदिर पहुंचते हैं तो वहां पर गुंडीचा मंदिर में थोड़े दिवस निवास करते हैं। वैसे जब प्रातःकाल रथ यात्रा आरंभ होती है तो चलते चलते शाम हो जाती है, क्योंकि भक्त खींचते हैं। तो अगर किसी कारण जगन्नाथ जी आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं तो भक्त लोग वहीं पर जगन्नाथ जी को विश्राम देते हैं। कई बार ऐसे होता है कि जगन्नाथ जी, बलदेव जी और सुभद्रा देवी उसी शाम तक गुंडीचा मंदिर पहुंच जाते हैं। और कभी कभी ऐसे होता है कि उनकी स्वेच्छा से वो बीच रास्ते में ही रुक जाना चाहते हैं और रथ में सवार होकर ही वो रात को वहीं विश्राम करते हैं, रास्ते में आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। भगवान से कौन जबरदस्ती कर सकता है। अगर कोई आदमी गाड़ी रास्ते में रोक ले बीच में तो 10 लोग आके उसके धक्का मार के निकालेंगे, पुलिस आएगी, टिकट मिलेगा। लेकिन जगन्नाथ जी जब बीच में रोक जाते हैं, बस रास्ते के बीच में गाड़ी रोक कर खड़े हो जाते हैं, कोई कुछ कर नहीं सकता है। और रात भर भगवान वहीं विश्राम करते हैं और फिर अगले दिन रथ पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद एक दिन और जगन्नाथ जी, बलदेव जी और सुभद्रा मैया रथ में ही रहते हैं, बाहर उतरते नीचे उतरते नहीं है। और फिर उसके बाद में उनको गुंडीचा मंदिर में ले लिया जाता है और वहां पर गुंडीचा मंदिर में वो 7 दिन निवास करते हैं। और इस तरह से 9 दिन बीत जाते हैं। फिर दशमी के दिवस पर उल्टा रथ होता है, इसको वहां पर बहुधा रथ कहते हैं। इस उल्टे रथ के समय तीनों रथ गुंडीचा मंदिर से फिर से जगन्नाथ मंदिर में लौट कर आते हैं और वहां आने के बाद भी फिर बहुत सारा बहुत सारी लीलाएं होती हैं। जगन्नाथ भगवान को अंदर जाने के लिए बहुत कठिनाई होती है क्योंकि लक्ष्मी देवी उनको अंदर नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि जाते समय लक्ष्मी देवी से वो वायदा करके जाते हैं कि हम अगले दिन कल ही आ जाएंगे और नहीं आते हैं, तो लक्ष्मी देवी को गुस्सा आता है। झूठ बोल के गए जगन्नाथ जी, कह के गए हम अगले दिन आएंगे, आए नहीं, तो लक्ष्मी देवी पे नाराज हो जाती है। और खास करके ये लीला, इसके बारे में ज्यादा हम चर्चा करेंगे हेरा पंचमी इस महोत्सव के चर्चा के दौरान, जो शायद अगले हफ्ते करेंगे। तो खैर, किसी न किसी तरह से बड़े मुश्किल से जगन्नाथ जी अपने घर में घुस जाते हैं, आ जाते हैं और फिर अपने आसन में आसन ग्रहण कर लेते हैं। क्योंकि गुंडीचा मंदिर का इतना महत्व है, इसलिए उड़ीसा में इस रथ यात्रा को लोग गुंडीचा यात्रा कहते हैं। उड़ीसा के बाहर रहने वाले लोग इस यात्रा को रथ यात्रा कहते हैं। रथ यात्रा शब्द से ही ये महोत्सव प्रसिद्ध है सब जगह, लेकिन उड़ीसा के लोग इसको गुंडीचा यात्रा कहते हैं। उड़ीसा में जाएंगे तो कोई से रथ यात्रा नहीं कहता, गुंडीचा यात्रा ही कहते हैं। अभी जगन्नाथ जी के रथ यात्रा के पहले 15 दिन से बहुत सारे महोत्सव वगैरह होते हैं। वैसे तो साल भर महोत्सव चलते हैं, लेकिन रथ यात्रा से संबंधित जो उत्सव हैं वो 15 दिन पहले से शुरू हो जाते हैं। वैसे 15 दिन पहले भगवान जगन्नाथ जी की स्नान यात्रा होती है, भगवान का अभिषेक किया जाता है और अलग अलग पावन कुंडों से और कुओं से 108 मटकों में पानी लाया जाता है और उनको शीतल जल से नहलाया जाता है, अभिषेक किया जाता है। और जब स्नान करते हैं भगवान तो ये स्नान मंडप कह के एक अलग सा स्थान है मंदिर के प्रांगण में ही, और इस स्नान मंडप के ऊपर उनको बिठाकर उनका अभिषेक वहां होता है। और उस समय उड़ीसा के जो राजा हैं उनके कोई प्रतिनिधि आकर पहले स्नान मंडप को साफ करते हैं और इस प्रकार से बड़े धूमधाम से वहां स्नान यात्रा मनाई जाती है। और जब भोग चढ़ाया जाता है भगवान को, उस समय सभी लोग आकर देख सकते हैं। ये साल में एक ही बार है, जबकि बाहर से भक्त आकर भगवान को जो भोग चढ़ाया जा रहा है ये देखें। नहीं तो भगवान को जब भोग चढ़ता है तो बंद दरवाजे के पीछे भगवान के गर्भगृह में होता है, केवल जो पुजारी वहां है वही भोग चढ़ाते हैं, वही देखते हैं, बाहर के किसी को अनुमति नहीं है ये देखने के लिए। लेकिन इस एक दिवस पर सभी लोग देखते हैं, तो स्नान यात्रा में बहुत बड़ी भीड़ होती है वहां पर। चैतन्य महाप्रभु वहां पे अपने भक्तों को ले जाया करते थे। इस प्रकार से स्नान यात्रा जब समाप्त हो जाती है तो स्नान के बाद भगवान को ठंडी लग जाती है, ठंडे पानी से स्नान किया ना, तो स्नान करके फिर उनको सर्दी हो जाती है, बुखार हो जाता है। और जब बुखार और स्नान हो जाता है तो उनको आराम करना है ना, फिर सबको दर्शन देंगे, थक जाएंगे, इसलिए अभी उनको ठीक होना है। अभी रथ यात्रा आने वाली है, रथ यात्रा के पहले अगर ठीक नहीं हुए तो कैसे निकलेंगे, इसलिए उनको थोड़े दिन विश्राम करना पड़ता है। तो 15 दिन वो आराम करते हैं, फिर वैद्य आते हैं, उनकी परीक्षा लेते हैं, अरे अरे बुखार हो गया तो उनको परहेज में रखा जाता है, केवल उनको फ्रूट जूस दिया जाता है, फलाहार पे ही वो रहते हैं, बाकी कोई भोजन नहीं लेते क्योंकि बीमार हैं। और धीरे धीरे से थोड़े बहुत औषध भी उनको दिया करते हैं पंडा लोग जो वैद्य होते हैं। फिर ऐसे भगवान आराम करते हैं, फ्रूट जूस जी भर के पीते हैं, दवाई भी लेते हैं, और इस दौरान वो लक्ष्मी देवी के साथ में रहते हैं एकांत स्थान में। तो अनवसर इसको कहते हैं, अनवसर मतलब ये 15 दिन जब भगवान बीमार हो जाते हैं। और उस समय वो केवल एक एकांत स्थान में लक्ष्मी देवी के साथ में रहते हैं, वहां केवल उनके साथ में रहते हैं, इसलिए निभृत कहते हैं स्थान को। निभृत मतलब एकांत स्थान, और वहां पे केवल लक्ष्मी देवी और जगन्नाथ जी रहते हैं। और इस समय स्नान यात्रा से लेकर जिस समय सारे मूर्तियां मतलब जगन्नाथ जी, बलदेव जी और सुभद्रा देवी उनको रथ पे बिठाया जाता है, तब तक उनकी सेवा जो हमेशा सेवा करने वाले पंडे हैं वो नहीं करते हैं। केवल वो सेवक जिनका नाम दयित है और दयित पति केवल ये कहते हैं। आप सबको जगन्नाथ जी के प्राकट्य की लीला की कथा याद है ना? आप जानते हैं विश्वावसु कौन थे? शबर राजा थे, जो कि नील माधव की पूजा किया करते थे। आपको याद होगा कि राजा इंद्रदुम्न, इनके कानों तक ये खबर पहुंची कि नील माधव भगवान की बहुत सुंदर मूर्ति है और ये मूर्ति कहीं भी नीलाचल में है तो इसे ढूंढ निकालना है। इनकी बहुत इच्छा हुई कि ये मूर्ति उनको लानी है और इनकी सेवा करनी है। तब विद्यापति इनके मंत्री ढूंढते ढूंढते गए और फिर पहुंचे शबरों के राज में, जंगल में पहाड़ के ऊपर। और शबरों के राजा थे विश्वावसु और वो रोज जाकर नील माधव की सेवा करते थे। विद्यापति का विवाह हुआ विश्वावसु की कन्या से और एक दिन जोर लगाकर अपने पत्नी के द्वारा विद्यापति वो नील माधव का दर्शन करने के लिए गए। उन्होंने किया और फिर लौटकर आ गए। और जब वो इंद्रदुम्न राजा को वहां ले गए तो उस समय नील माधव ओझल हो गए थे, गायब हो गए थे। और फिर बाद में भगवान ने स्वप्न में आकर इंद्रदुम्न राजा से कहा कि इस रूप में मैं कभी प्रकट नहीं होऊंगा, अभी मैं अलग रूप में प्रकट हो जाऊंगा। और धीरे से उसके बाद में जगन्नाथ जी प्रकट हुए। तो शबर जो राजा थे उनकी जो समाज है उनको वो खास सेवक थे नील माधव के, इसलिए उनको दयित कहा गया है, जो बहुत प्रिय हैं भगवान जगन्नाथ के। और हालांकि ये ब्राह्मण नहीं हैं, फिर भी क्योंकि भगवान जगन्नाथ के इतने निकट हैं, ये इतनी प्रेममयी निकट की सेवा उन्होंने की है नील माधव से लेकर जगन्नाथ को, इसलिए इनको भगवान बहुत करीब लेते हैं। और जगन्नाथ मंदिर में भी इनका बहुत विशेष स्थान है। और इन दयितों में से जो ब्राह्मण हैं इनको दयित पति कहते हैं। और ये लोग स्नान यात्रा के बाद अनवसर के समय वही भोग चढ़ाते हैं भगवान को, वही भगवान की सेवा करते हैं, दूसरे कोई वहां आ नहीं सकते हैं। तो इस प्रकार से दयित और दयित पति ये सेवा करते हैं जगन्नाथ जी की इस अनवसर के समय। और बाद में जब जगन्नाथ जी, बलदेव और सुभद्रा मैया इनको ले जाया जाता है मंदिर से रथ के ऊपर, इसको पहंडी कहते हैं, ये उत्सव को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, बहुत सारे लोग आते हैं बड़े हर्ष उल्लास से। एक तरीका होता है जगन्नाथ जी जब ले आए जाते हैं अलग अलग तरह से, बड़े झूमते झूमते उनको ले आते हैं। तो खैर उसका वर्णन कभी और करेंगे। तो इस समय जब भगवान लक्ष्मी देवी के साथ में रहते हैं तो उनके शरीर को नया रंग दिया जाता है, क्योंकि स्नान के बाद कभी रंग निकल आता है तो नया रंग देना पड़ता है, इसलिए इसको अंगराग कहते हैं। इस 14 दिन के समय को, उत्सव को भी अंगराग कहते हैं। नए रंग उनके शरीर पर डाले जाते हैं। केवल आंखों को रंग नहीं दिया जाता, आंखों का पेंटिंग नहीं किया जाता है, लेकिन बाकी सारे शरीर में उनको रंग डाला जाता है। और इसलिए इसको नव यौवन भी कहते हैं इस उत्सव को, क्योंकि भगवान को फिर से एक युवक का शरीर मिल जाता है, मतलब नया रंग, नई ताजगी, नया तेज उनके शरीर में, इसलिए उनको नव यौवनम, फिर से जगन्नाथ जी नव युव अवस्था में आ जाते हैं। तो ऐसी सुंदर सुंदर लीलाएं यहां पर करते हैं। और दो जो हफ्ते होते हैं इस समय भगवान जगन्नाथ जी बलदेव और सुभद्रा वो ठीक से खड़े नहीं रहते और सोए भी नहीं रहते, बीच रास्ते में उनको रखा जाता है। ऐसे जैसे आप लग्जरी बस में जाते हैं तो सीट पीछे करते हैं, न सोए हुए न बैठे हुए, तो बीच के स्थिति में उनको रखा जाता है। और ये 14 दिन इनकी सेवा इस प्रकार से होती है। और फिर 2 हफ्ते जब समाप्त हो जाते हैं फिर जगन्नाथ जी को फिर से प्रकट होना होता है, और इसको नेत्रोत्सव कहते हैं। नेत्रोत्सव क्यों कहते हैं? क्योंकि उनके नेत्रों को रंग दिया जाता है, पेंटिंग किया जाता है। पहले तो केवल सारे बाकी शरीर को किया जाता है, और नेत्रोत्सव के दिन जो हमेशा के पंडा होते हैं, पुजारी होते हैं, वो आकर जगन्नाथ जी के आंखों को पेंटिंग करते हैं। अब जगन्नाथ जी हृष्ट पुष्ट हो गए हैं, फिर से उनकी तबीयत फिर से ठीक ठाक हो गई है। अभी वैद्यों ने दवाई दी है, फ्रूट जूस पी लिया है, फल फूल खा के अभी फिर से हृष्ट पुष्ट होकर तैयार है वो भी रथ यात्रा में निकलने के लिए। तो ये है नेत्रोत्सव। तो 15 दिन जब समाप्त हो जाते हैं स्नान यात्रा के बाद, तो इस समय सूर्योदय के समय फिर अभी जगन्नाथ जी रथ यात्रा के लिए आने के लिए तैयार हो जाते हैं। और फिर थोड़े घंटे बाद फिर पहंडी उत्सव होता है, जगन्नाथ जी को रथ में सवार किया जाता है और फिर रथ यात्रा आरंभ हो जाती है। लेकिन नेत्रोत्सव के या रथ यात्रा के पहले दिवस गुंडीचा मंदिर का मार्जन होता है। ये प्रथा चैतन्य महाप्रभु ने आरंभ की थी। तो आज जबकि गुंडीचा मंदिर का मार्जन का दिवस है, हम इस लीला का वर्णन करेंगे। इसका महत्व बहुत है, खास करके हमारे गौड़ी वैष्णव संप्रदाय में, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं यह उत्सव या यह प्रथा चालू की थी। एक बार ऐसे हुआ कि जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में थे और रथ यात्रा का दिवस करीब आ रहा था, तो चैतन्य महाप्रभु ने काशी मिश्र, जिनके घर में वो रहते थे गंभीरा, सार्वभौम भट्टाचार्य और जगन्नाथ मंदिर के जो सुपरिंटेंडेंट थे, अध्यक्ष थे, इनका नाम था तुलसी, इन तीनों को बुलाया और उन्होंने आदेश दिया कि मुझे मेरे भक्तों के साथ में गुंडीचा मंदिर का मार्जन करना है, क्योंकि भगवान वहां पर जाने वाले हैं तो स्थान तो बहुत स्वच्छ होना चाहिए। तो तुलसी ने कहा कि वैसे तो राजा ने हमें बताया है कि आपकी जो भी इच्छा हो वो हमें तुरंत पूरी करनी चाहिए, वैसे आपको ये सेवा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी इच्छा हमारे लिए आदेश है, इसलिए आप जो चाहें हम वो आपको देने के लिए हम आतुर हैं, तो हम तुरंत आपको 100 मटके प्रदान दे देंगे जिससे कि आप पानी भर के गुंडीचा मंदिर का मार्जन कर सकें। वैसे राजा प्रताप रुद्र वो भगवान चैतन्य महाप्रभु के और जगन्नाथ जी के बड़े भक्त थे और हमेशा चाहते थे कि किसी न किसी तरह से वो भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करें। लेकिन ये भी एक लीला थी, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु सन्यासी लीला कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मैं किसी राजा से मिल नहीं सकता, कोई संसारी व्यक्ति से एक सन्यासी कैसे मिल सकता है, ये संभव नहीं है। तो खैर प्रताप रुद्र राजा ने कह दिया सार्वभौम भट्टाचार्य से, अगर ऐसा है तो फिर मेरे राज्य का, मेरे पद का कोई मूल्य नहीं है, मैं मेरे राज्य को त्याग दूंगा, मैं सन्यास हो जाऊंगा और योगी होकर मैं इधर उधर भ्रमण करूंगा, मुझे राज्य में, मेरे कुटुंब में, ऐश्वर्य में कोई रुचि नहीं है। सारे भक्तों ने जब ये सुना तो बड़े आश्चर्यचकित हो गए प्रताप रुद्र महाराज के भक्ति भाव को के बारे में सुनकर। तो खैर चैतन्य महाप्रभु ने जान लिया, लेकिन फिर भी बाहरी रूप से उन्होंने स्वीकार नहीं किया, लेकिन फिर भी वो जानते थे कि महाराज प्रताप रुद्र की भक्ति भावना कितनी तीव्र थी। ये लीला एक और है कि किस तरह से आखिर में महाराज प्रताप रुद्र को चैतन्य महाप्रभु की कृपा हुई। लेकिन अब कहने का तात्पर्य यह है कि महाराज प्रताप रुद्र ने आदेश दी हुई थी कि जो भी चैतन्य महाप्रभु को चाहिए वो इच्छा तुरंत उनकी पूरी होनी चाहिए, इसलिए तुलसी ने सारी व्यवस्था कर दी। चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों को बताया कि आज हम जाकर गुंडीचा मंदिर का मार्जन करने वाले हैं, तो बहुत बड़ी संख्या में जो उनके भक्त हैं वो वहां पर उपस्थित हो गए। जैसा कि आपको पता है, हर साल चातुर्मास के समय चार महीनों के लिए बंगाल के जो भी गौड़ीय वैष्णव होते थे वो सब जगन्नाथपुरी आया करते थे चैतन्य महाप्रभु का संग प्राप्त करने के लिए, जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल होने के लिए। तो बहुत बड़ी संख्या में भक्त आए हुए थे और सब बड़े आतुरता से उत्साह से गुंडीचा मंदिर में हाजिर हो गए मंदिर मार्जन करने के लिए। फिर चैतन्य महाप्रभु वहां पर पहुंचे और उन्होंने हरेक भक्त को हाथ में एक एक झाड़ू थमा दिया और कहा कि चलो बड़े उत्साह से सभी लोग अभी मंदिर को साफ करो। तो बड़ी संख्या में जो भक्त थे मंदिर के अलग अलग भागों को स्वच्छ करने लगे और चैतन्य महाप्रभु सबसे आगे साफ करने में बड़े उत्साह से जोर से मंदिर के अंदर, फिर मंदिर के अलग अलग कमरों में, गर्भगृह में, सिंहासन, अंदर बाहर, यहां तक कि मंदिर के अंदर जो छत है उसको भी उन्होंने झाड़ू से साफ किया। मंदिर के बाहर के दरवाजे हैं, मंदिर के प्रांगण को सब जगह झाड़ू से साफ कर रहे थे। और जैसे जैसे वो स्वच्छ कर रहे थे तो सभी लोग बड़े उत्साह से कीर्तन करते हुए कर रहे थे। हरे कृष्ण मंत्र की ध्वनि सब जगह गूंज रही थी, इतना भक्तिमय वातावरण था। सभी लोग बड़े प्रभावित हो गए, सभी लोग भक्तिभाव से उत्साह से जोर से झाड़ू मार रहे थे और चैतन्य महाप्रभु सबसे ज्यादा सफाई कर रहे थे। जब भी वो झाड़ू मारते किसी एक छोटे इलाके में, जगह में, तो वहां जो भी कचरा जम जाता फिर उसको उठाकर अपने कपड़े में डालते, बाहर जाके फिर फेंक देते। और इस प्रकार सारे भक्त जो हैं उन्होंने भी ऐसे करना आरंभ किया, साफ करते जो भी कचरा था, घास वगैरह, फिर उसको अपने कपड़े में लेते, बाहर जाके फेंक देते। और इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि सारे भक्त लोग इतने उत्साह से मंदिर का मार्जन कर रहे हैं तो वो बड़े प्रसन्न हुए और उत्साह से वो करने लगे और सबसे कहने लगे और अच्छी तरह से साफ करो, और अच्छी तरह से साफ करो। और सभी लोग उत्साह से और साफ करने लगे मंदिर को। और ये देखकर और जो भी वहां लोग आए थे आश्चर्यचकित हो गए इस दृश्य को देखकर। चैतन्य महाप्रभु जब देखते कि कोई भक्त अच्छी तरह से झाड़ू मार रहा है, साफ कर रहा है, तो जाके उसे शाबाशी देते, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, ऐसे ही सफाई करो ताकि दूसरे लोग देखकर वो भी प्रेरित हो जाएं, वो भी अच्छी तरह से स्वच्छ करेंगे। और जब कोई अच्छी तरह से नहीं कर रहा होता झाड़ू तो उनको जाकर डांटते कि ठीक से करो। देखिए मंदिर का मार्जन करना ये कोई साधारण बात नहीं है, ये भी हमें बड़े हृदय से करना चाहिए। क्योंकि जब हम भगवान की अर्चा विग्रह की पूजा करते हैं, आरती उतारते हैं, हम जप करते हैं या हम मंदिर का मार्जन करते हैं, ये सब भगवान की सेवा है। भगवान की सेवा हम कोई भी क्यों न कर रहे हो लेकिन उतने ही उत्साह से, उतने ही हृदय से, उतने ही प्रेम से हमें करना चाहिए, नहीं तो भगवान प्रसन्न नहीं होंगे और वो हमारी सेवा स्वीकार नहीं करेंगे। अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि अरे ये तो झाड़ू मारना है, ये झाड़ू मारेंगे हम क्या, हम तो प्रवचन देंगे, हम प्रचार करेंगे, हम अर्चा विग्रह की पूजा करेंगे, हम कोई अच्छी सेवा करेंगे, ये झाड़ू का मारना ये तो हमारा काम नहीं है। लेकिन भगवान की सेवा में झाड़ू मारने में, प्रवचन देने में, आरती उतारने में कोई अंतर नहीं है, सब समान है। बल्कि अगर कोई भक्त हृदय से झाड़ू मार रहा हो और नम्रता से पूरे हृदय लगाकर उसकी पूरी चेतना उस कार्य में केंद्रित है, उस झाड़ू और मंदिर का जो मंदिर है उसके अलावा कुछ नहीं जानता है, तो भगवान ऐसे भावना से बड़े प्रसन्न होते हैं। जब कोई भक्त देखता है कि झाड़ू मारते मारते अरे यहाँ कुछ कण बच गया, इतना थोड़ा कुछ और गंदा रह गया, और उत्साह से करता है, तो ऐसे मार्जन से भगवान अति प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई भक्त झाड़ू मारते समय यूं ही बस मारेगा, यूं हाथ घुमाएगा, थोड़ा कचरा वहां रह गया तो रह गया, कुछ वहां पड़ा है उसको उठाया नहीं, ये झाड़ू मारना देखिए कितनी बड़ी बात है, कोई साधारण बात नहीं है। झाड़ू मारने के लिए भक्त को बहुत सावधानी से करना चाहिए, ध्यान देकर करना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई टेबल है, कोई कुर्सी है, तो कई बार भक्त झाड़ू मारेंगे तो उसके नीचे नहीं मारेंगे, या यहाँ टेबल है अरे अंदर कौन झाड़ू लगाएगा, तो हम वैसे ही छोड़ देते हैं, बार बार से ऊपर ऊपर से कर लेते हैं। या जो वहां पर चटाई है, अरे चटाई कौन उठाएगा, उसे पे झाड़ना पड़ेगा, उसके नीचे से मारना पड़ेगा, नहीं। या प्रभुपाद के व्यासासन है, उसके नीचे कौन जाएगा। लेकिन नहीं, चैतन्य महाप्रभु ने सिखलाया अपने भक्तों को कि कैसे झाड़ू मारना चाहिए, खुद उन्होंने झाड़ू मार के सिखाया। और इस प्रकार से हमें देखना चाहिए, चैतन्य महाप्रभु के पदचिन्हों में हमें चलना चाहिए कि जब भी हम मंदिर का मार्जन करते हैं तो हमें इतने सावधानी से करना चाहिए, हमें सोचना चाहिए कि स्वयं राधा गोकुलानंद या चैतन्य महाप्रभु हमारे सामने हाजिर हैं। अगर वो हमारे सामने हाजिर होते प्रत्यक्ष रूप में तो हम कैसे झाड़ू मारते, तो फिर क्या हम हाथ यूं रख के हम करते कुछ नहीं, बड़े ध्यान से हम करते। और वैसे भी हमें जानना चाहिए कि स्वयं राधा गोकुलानंद उपस्थित हैं, हम ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर वो होते तो हम ऐसा करते, नहीं वो तो है ही। और हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि पर्दा बंद है इसलिए वो देख नहीं सक रहे हम कैसे झाड़ू मार रहे, उनके लिए पर्दा कोई बंधन नहीं है, वो तो सब कुछ देख सकते हैं, पर्दा बंद हो या खुला हो। इसलिए हर एक कोने कोने में हमें जाना चाहिए। मंदिर की स्वच्छता इससे पता चलता है कि भक्तों की भक्ति कितनी है। हम कहां भी जाएंगे किसी मंदिर में, सबसे पहली बात हम ये देखते हैं कितना स्वच्छ है ये मंदिर। अगर मंदिर स्वच्छ हो तो हमें पता चल सकता है कि भक्तों की भावना बड़ी अनुकूल है, क्योंकि वो समझते हैं कि ये भगवान का घर है। अभी हर एक व्यक्ति अपना घर साफ रखना चाहता है। हाँ, भारतवर्ष में ये एक आदत है, अपने घर को स्वच्छ रखेंगे लेकिन सारा कचरा फिर बाहर रास्ते में डालेंगे या दूसरे के आंगन में डाल देंगे। अपना घर स्वच्छ हो लेकिन पड़ोस जितना भी गंदा हो, सब कुछ चल रहा है गंदगी, वह बाहर चली जाएगी। पहले वैदिक संस्कृति में ऐसे नहीं हुआ करता था, जो एक प्रकार की सामाजिक एक भावना थी, सामूहिक स्थानों को बड़ा स्वच्छ रखते थे। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, हम देखते हैं कि मलमूत्र सब जगह रहता है, सब लोग बाहर करते हैं, जहां अच्छे जहां स्थान पर जाना चाहिए वहां नहीं जाते। और इसलिए नदियों में और कुंडों में सब जगह प्रदूषित कर देते हैं। लेकिन वैदिक संस्कृति में सारे इन स्थानों को बहुत स्वच्छ रखना था, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने इसको बहुत जोर दिया। ये प्रथा उन्होंने इसलिए आरंभ की कि सबको पता चले कि भगवान के मंदिर की स्वच्छता कैसे होनी चाहिए। और वैसे भी देखा जाए तो झाड़ू मारना ये कोई भौतिक दृष्टि से ऊंचा काम नहीं माना जाता, एक शूद्र का काम है, ब्राह्मण का काम है पूजा पाठ करना, भगवान की सेवा करना, पूजा अर्चना करना, क्षत्रिय का काम होता है संरक्षण करना, और वैश्य का काम होता है व्यवसाय करना। लेकिन वैष्णव किसी भी प्रकार का कार्य कर सकता है भगवान के लिए, चाहे वो झाड़ू मारना हो, व्यवसाय करना हो भगवान के लिए, या कुछ अर्थव्यवस्था मैनेजमेंट करना हो, या फिर पूजा पाठ करना हो, भगवान के लिए वैष्णव सभी कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए वैष्णव के लिए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये सब कोई मायने नहीं रखता, वैष्णव वैष्णव होता है। वैष्णव को कभी भी भौतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। और किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं झाड़ू कैसे मारूंगा, ये तो नीच काम है, नहीं। इसलिए स्वयं महाराज प्रताप रुद्र आकर रथ के सामने वो झाड़ू मारते थे रास्ते के ऊपर। और एक बार ऐसे हुआ कि जब महाराज प्रताप रुद्र ने विवाह का प्रस्ताव रखा था कांची के राजा के कन्या के साथ, तो उस समय कांची के राजा ने कहा, करी ये राजा तो रास्ते को झाड़ू मारता है, तो हम ऐसे राजा को थोड़ी हम देंगे। वो जो कांची के राजा थे समझते नहीं थे कि ये कितने महान भक्त हैं, और भगवान के सामने झाड़ू मारना, रास्ते को स्वच्छ करना कितना महत्वपूर्ण कार्य है। वो राजा इतने भक्त नहीं थे इसलिए इसको समझ नहीं पाए, और महाराज प्रताप रुद्र को गलत समझे। तो महाराज प्रताप रुद्र को गुस्सा आया, उन्होंने आक्रमण किया उस स्थान के ऊपर, युद्ध किया, क्योंकि ये जगन्नाथ जी की अपमान हो गया वास्तव में। तो इस प्रकार से कई लोग होते हैं, बड़े राजा भी हों लेकिन वो गलत समझते हैं, सोचते हैं कि झाड़ू मारना भगवान के लिए भी करें तो कुछ ठीक, उसको एक निम्न श्रेणी का कार्य समझते हैं। एक बार एक भक्त आए थे तो वो कह रहे थे कि यहाँ के कोई नेता को हमें जगन्नाथ उत्सव में बुलाना चाहिए, रथ यात्रा में उद्घाटन करने के लिए। तो जब चर्चा हो रही थी, हम इतने इच्छुक नहीं थे क्योंकि जगह जगह से राजनेता के लोग आते हैं, राजकरण के लोग, और वहां आकर केवल वो अपना बड़प्पन कराना चाहते हैं, भगवान की सेवा है इसलिए नहीं आते, ताकि लोग उनको देखें, उनका फोटो छपे, ऐसे इसी लोग आते हैं। तो हम इतने उच्छुक नहीं थे, तो जब उन्होंने कहा कि नहीं उनको बुलाएंगे, कहा ठीक है सोचेंगे, तो आके उनको हम सेवा में लगाएंगे, भगवान के सामने वो भगवान की झाड़ू लेकर रास्ते का मार्जन करेंगे, उनको उनके हाथ से सेवा हो जाएगी, बड़े भाग्यशाली होंगे वो। तो बहुत कह रहे हैं, अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे करेंगे, अरे वो मंत्री लोग आएंगे, सोचेंगे हमें क्या कर दिया, बुलाया इतना सम्मान, हमें अतिथि कह के बुलाया, अभी झाड़ू मरा रहे हैं हमसे। अरे ये तो साधारण झाड़ू नहीं है, ये तो भगवान के सामने आप झाड़ू मार रहे हैं, ये कोई ऐसे नहीं कि किसी ऐरे गहरे स्थान में आप जाके कोई झाड़ू मार रहे हैं, ये तो एक सौभाग्य है, अहो सौभाग्य, भगवान जगन्नाथ जी के सामने आकर आपको मार्ग को पवित्र करने के लिए, मार्ग को स्वच्छ करने के लिए एक संधि मिल रही है, ये कोई साधारण बात नहीं है। इसका तो मतलब है कि भक्त भी कभी कभी इस बात को अच्छी तरह से नहीं समझते हैं कि ये कितनी महत्वपूर्ण बात है। और चैतन्य महाप्रभु ने लीला को इतना महत्व दिया, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने गुंडीचा मंदिर मार्जन के ऊपर बहुत लंबा तात्पर्य लिखा है, ये समझाने के लिए कि इसके पीछे कितना महत्व है। इसलिए प्रभुपाद जी ने भी इस लीला को बहुत महत्व दिया था। तो खैर, चैतन्य महाप्रभु कभी जो लोग गलत झाड़ू मार रहे थे, ठीक से नहीं कर रहे थे, उत्साह से नहीं कर रहे थे, तो उनको डांटते, और इस प्रकार से बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी मात्रा में वो धूल जो है एक जगह एकत्र हो गई। जो अन्य भक्त थे वो जो भी अपना धूल निकालते थे एक जगह डालते थे, सारे भक्त एक जगह धूल डालते थे, एक छोटा सा पहाड़ जैसे हो गया धूल का। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जो धूल निकालते थे और अपने कपड़े में डालकर अलग सा पहाड़ करते, तो चैतन्य महाप्रभु ने किया हुआ धूल का पहाड़ इतना बड़ा था कि अन्य सारे भक्तों के धूल के पहाड़ से बड़ा था। तो अकेले चैतन्य महाप्रभु ने इतना साफ किया कि उन्होंने इतना धूल निकाला कि दूसरे सारे भक्तों से ज्यादा। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने उदाहरण दिया दूसरों को कि कैसे झाड़ू मारना चाहिए। और फिर जब एक बार साफ हो गया, फिर चैतन्य महाप्रभु ने दोबारा उनको साफ कराया सारे भक्तों को झाड़ू से, और इस प्रकार से कितने बड़े संख्या में सब लोग फिर से झाड़ू मार रहे थे, दोबारा मंदिर का मार्जन हो गया। और फिर भी जगह जगह चैतन्य महाप्रभु बड़े गौर से परीक्षा करते थे, कहीं कुछ इधर कचरा हुआ होगा, कुछ छोटा सा पत्थर, कुछ भी, जगह जगह जाकर कण कण उठा के वो फेंक रहे थे बाहर, इतने ध्यान से, इतने सावधानी से उन्होंने किया। और भक्त लोग इसको देखकर बड़े आश्चर्यचकित हो गए। और फिर जब वो हो गया तो अभी पानी से धोने का समय आ गया, तो पास में जो कुंड था उस कुंड में से भक्तों ने बहुत बड़ी संख्या में जो मटके थे उनमें पानी भर भर के वो वहां पर ले आए और फिर उत्साह से सभी लोग पानी नीचे फेंकने लगे और झाड़ू से फिर साफ करने लगे, पानी निकालने लगे। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं उस दृश्य को और कहते हैं कि लोग जब मटका एक दूसरे को देते थे या कुछ भी बोलना चाहते थे तो कृष्ण शब्द के अलावा कुछ नहीं कहते। अगर किसी व्यक्ति को कुछ चाहिए होता तो कहता कृष्ण कृष्ण, मान लीजिए किसी को कुछ झाड़ू चाहिए था कहता था कृष्ण कृष्ण, तो दूसरा भक्त जो वहां था वो झाड़ू को लेता समझ जाता था केवल कृष्ण कहने से कि इसको क्या चाहिए, तो वो कहता कृष्ण कृष्ण और झाड़ू उसको दे देता। फिर किसी को मटका वहां रखना था वो कहता कृष्ण कृष्ण, तो दूसरा कहता कृष्ण कृष्ण रख देते थे। इस तरह से कृष्ण शब्द के अलावा और कोई बात ही नहीं होती थी उस समय। और ऐसे मंदिर से वो कुंड से पानी ले आते, यहां पर पानी डाल देते, झाड़ू मारते और अच्छी तरह से साफ करते, फिर लोग जाते पानी भरने के लिए। और इतनी बड़ी संख्या हो गई भक्तों की आने जाने की कि मटके एक दूसरे का टक्कर खा के मटके टूट जाते। और वहां पर कुंड के तालाब के तट पर कोई जगह नहीं था लोगों को खड़े होने के लिए, क्योंकि सारा तालाब का तट भर गया था भक्तों से जो कि मटके में पानी भरना चाहते थे। तो मटके से पानी भर के आते, टक्कर लग जाता किसी और से, मटके फूट जाते, फिर नए मटके लाते और लेते। इस प्रकार से जो रास्ता था बीच का वो भी एक तालाब जैसे हो गया, नदी बहने लगी वहां पर। और फिर वहां पर पानी लेके आ जाते और ऊपर नीचे पड़े छत पे, दीवारों पर, जमीन पर, मंदिर के बाहर प्रांगण में, फिर भगवान का सिंहासन ले आकर महाप्रभु ने स्वयं उसको साफ किया। इस तरह से इतना इतने बड़े ध्यान से सारी स्वच्छता हो गई कि वहां से नदियां पानी की बहने लगी कुंड की ओर। और उस समय थोड़े थोड़े ऐसे भक्त थे जो पीछे छुप छुप कर वो पानी का पान करते, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों का स्पर्श करके आई थी। वैसे चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं भगवान है, लेकिन भगवान की बात तो क्या, अगर शुद्ध भक्तों के चरण कमलों की के पानी का, चरणों के अमृत का हम पान करेंगे तो इससे बहुत ज्यादा लाभ होता है। भक्त पद धूलि और भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशिष्ट ए तीन महाबल। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि भक्त पद धूलि, भक्तों के चरण रज, भक्त पद जल, उनके चरणों को साफ किया हुआ जल चरणामृत, और भक्त भुक्त अवशिष्ट मतलब उनका महाप्रसाद, ये तीन महाबल, ये तीन वस्तु जो होते हैं बड़े शक्तिशाली होते हैं। किसी को अगर शॉर्टकट मारना है गोलोक वृंदावन के लिए तो ये तीन चीजों को पान करना चाहिए, लेकिन तकलीफ यही होती है कि वैष्णव देना नहीं चाहते हैं। और चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं श्री कृष्ण हैं, लेकिन वो एक भक्त की लीला कर रहे हैं। जब भी उनको कोई भगवान कहकर संबोधित करता तो वो अपना कान बंद करते और कहते विष्णु विष्णु विष्णु, ये अपराध मत करो, एक साधारण जीव को भगवान नहीं बनाओ। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु बताना चाहते थे कि लोग कितना गलत काम कर रहे हैं कि किसी साधारण जीव को भगवान कहते हैं, जब वो थोड़ी बहुत योग सिद्धि दिखाता है या थोड़ी अद्भुत कार्य करता है तो लोग उसे भगवान कहते हैं और वो व्यक्ति उसको स्वीकार करता है। जैसे कि कई लोग हैं उनके अनुयायी उनको भगवान कहके पुकारते हैं, और जब उन व्यक्तियों से कहा जाता है कि आप भगवान हैं क्या, आप तो नहीं हैं, तो फिर आप अपने आप को भगवान क्यों कहलाते हो, तो व्यक्ति कहते हैं कि हम तो नहीं कहते, हमारे अनुयायी हमको कहते हैं। अगर अनुयायी कह रहे हैं तो आपको मना करना चाहिए, अनुयायी मतलब आपकी बातों मानेंगे, तो आप कह दीजिए कि आप भगवान नहीं है, आपको भगवान कहकर नहीं पुकारना चाहिए, आप कहते क्यों नहीं। तो आपकी शांति इस बात का सबूत है कि आप भी चाहते हैं कि वो आपको भगवान कहकर बुलाएं। बंबई में भी एक ऐसे तथाकथित भगवान है और दक्षिण भारत में भी हैं कई ऐसे भगवान, जगह जगह पर ऐसे तथाकथित भगवान हो जाते हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने आदर्श दिखाया कि अगर कोई ऐसा करे तो कैसे उदाहरण, कैसे हमें व्यवहार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं हमें भगवान मत बुलाओ। प्रभुपाद को भी जब भी एक भक्त ने भगवान कह के बुलाया तो इतने नाराज हो गए उस भक्त के ऊपर, हालांकि वो सन्यासी थे, उनको संस्था के बाहर ही कर दिया, कहा कि हमारे संस्था में ही मत रहो क्योंकि तुम बहुत उत्पात पैदा करोगे ऐसे गलत बातों का प्रचार करके। मैंने 100 बार कहा है कि मैं भगवान नहीं हूं, मैं केवल भगवान के दासों का दास हूं, और तुम कहते हो कि मैं स्वयं अवतार हूं भगवान के। बहुत गुस्सा हो गया प्रभुपाद उस समय। इसलिए हमें इस बात को बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं भगवान है, लेकिन क्योंकि भक्त की भूमिका निभा रहे हैं इसलिए उन्होंने बाहरी रूप से दुख प्रकट किया। एक बार ऐसे हुआ कि एक बंगाल के भक्त वहां थे, सारे तो बंगाल के भक्त थे वहां पर आए हुए, वहां के स्थानीय भक्त भी थे। एक भक्त आया, बड़ा अकलमंद था वो, उसने पानी का मटका लिया और चैतन्य महाप्रभु के चरणे के ऊपर उन्होंने डाल दिया पानी, और जो पानी बह रहा था उनके चरणों से जल्दी से उन्होंने पानी का पान उस जल का पान किया, और चैतन्य महाप्रभु ने देखा और अंदर ही अंदर से वो प्रसन्न हुए, सोचने लगे कि ये भक्त बड़ा बुद्धिमान है, अंदर से प्रसन्न हुए, लेकिन बाहरी रूप से उन्होंने गुस्सा प्रकट किया क्योंकि वो बताना चाहते थे कि भक्त को कैसे रहना चाहिए। और उन्होंने स्वरूप दामोदर गोस्वामी को बुलाया और कहा कि अरे स्वरूप, देखो तुम्हारा ये बंगाली वैष्णव क्या हरकत करता है, तुम्हारा बंगाली वैष्णव। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि इसका मतलब है कि जो भी बंगाल के वैष्णव आया करते थे वो स्वरूप दामोदर गोस्वामी के शिष्य के समान थे। इसलिए स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने को कहा कि देखो तुम्हारे बंगाली वैष्णव ने क्या किया, हमारे चरने के ऊपर पानी डाला और फिर वो पानी का पान किया और इतना नहीं दूसरों को भी बांट रहा है। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने देखा उस भक्त की ओर, वो भक्त को गले से पकड़ा पीछे और बाहर निकाल दिया, जाओ यहां से। तो वो लेकिन उसका काम हो गया था, वो भक्त ने अपना काम कर लिया। तो इस प्रकार से अंदर ही अंदर से चैतन्य महाप्रभु खुश हुए लेकिन बाहरी रूप से उन्होंने थोड़ा शोक व्यक्त किया। तो ऐसे कई लोग छुप छुप कर भी जो पानी चैतन्य महाप्रभु के चरणों को स्पर्श करके वैसे बह के जा रहा था, तो बाहर से सब लोग इकट्ठे होकर वहां पे सब लाइन में खड़े थे, सब एक एक उनके जल चरण जल का पान करने के लिए। तो खैर बड़े अच्छे तरह से सब साफ हो गया और फिर ऐसे सब चमक रहा था सारा मंदिर, मानो कि कोई जैसे मार्बल की का जमीन हो, ऐसे वो पत्थर सब चमक रहे थे। और इस ये समाप्त होने के बाद में फिर सारे भक्त संतुष्ट हो गए और फिर भगवान ने चैतन्य महाप्रभु ने गुंडीचा मंदिर के पास में जो नरसिंह मंदिर है वहां पर उन्होंने सफाई कर ली। जब हम जगन्नाथपुरी की यात्रा में जाएंगे तो हम इन दोनों मंदिरों में भी जाएंगे, गुंडीचा मंदिर में भी और उसके पास में जो नरसिंह मंदिर है वहां पर भी हम जाएंगे। तो नरसिंह मंदिर का भी मार्जन किया उन्होंने भक्तों के संग और फिर पास में वहां पर एक उद्यान में गए। वहां उद्यान में बैठकर वहां पे जब सारे भक्त विश्राम कर रहे थे तो जगन्नाथ मंदिर के जो सुपरिंटेंडेंट थे अध्यक्ष तुलसी, उन्होंने 500 लोगों के लिए जगन्नाथ का महाप्रसाद वो ले आए और नाना प्रकार के स्वादिष्ट से स्वादिष्ट व्यंजन। और इसको देखकर चैतन्य महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए और फिर सभी लोग वहां पर प्रसाद का सेवन करने के लिए बैठ गए। बहुत बड़ी संख्या में भक्तों ने वितरण किया, थोड़े भक्त बैठे थे चैतन्य महाप्रभु के पास में, सार्वभौम भट्टाचार्य, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य इत्यादि से बैठे थे, स्वरूप दामोदर गोस्वामी, आचार्य रत्न, आचार्य निधि, ये सारे भक्त प्रसाद बांट रहे थे सब भक्तों को। और इस प्रकार से कृष्ण कृष्ण कहके ये सभी लोग प्रसाद का, जगन्नाथ के प्रसाद का आनंद ले रहे थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इस गुंडीचा मंदिर के मार्जन के ऊपर टीका, लीला के ऊपर टीका करते हैं और इस टीका में वो कहते हैं कि ये जो लीला है भक्तों के लिए इतना महत्वपूर्ण इसलिए है, पहली बात तो ये हमें सिखलाता है कि हमें मंदिर का मार्जन कैसे करना चाहिए और इसका महत्व क्या है। प्रकार के सेवा से होता है, लेकिन भगवान के मंदिर का मार्जन जब हम करते हैं, झाड़ू मारते हैं, पोता मारते हैं, हमें समझना चाहिए कि हर एक बार जब हम झाड़ू मारते हैं इससे हमारा हृदय धीरे धीरे स्वच्छ हो रहा है। और वो बताते हैं कि गुंडीचा मंदिर का मार्जन क्यों हुआ, क्योंकि जगन्नाथ जी को वहां आना था, बलदेव भगवान को वहां आना था, सुभद्रा देवी को आना था, तो एक गंदे जगह में कैसे भगवान को बिठा सकते थे। इसलिए जहां भी भगवान का निवास स्थान हो वो स्थान स्वच्छ होना चाहिए। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने गुंडीचा मंदिर का मार्जन किया। ठीक उसी प्रकार अगर हम हमारे हृदय में भगवान को स्थित करना चाहते हैं तो हमारे हृदय को हमें स्वच्छ करना चाहिए। अगर हमारे हृदय में नाना प्रकार के अनर्थ हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इत्यादि, तो भगवान कैसे रहेंगे हमारे हृदय में, उनको कैसे अच्छा लगेगा ऐसे गंदे स्थान में रहकर। तो ये जो अनर्थ हमारे हृदय में है वो गंदगी है, जिसकी वजह से भगवान अंदर आना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन जब हम भक्ति के अलग अलग नियमों का पालन करते हैं, जप करते हैं, सेवा करते हैं भगवान की, तो इससे क्या होता है कि हमारे हृदय का मार्जन होता है। और हृदय का मार्जन करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो तरीका खास करके जो कलयुग में बताया हुआ है वो है हरिनाम संकीर्तन। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधो जीवनम आनंदाम्बुदिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम। चैतन्य महाप्रभु स्वयं बताते हैं कि ये हरिनाम का संकीर्तन करने से, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, जिसका परम विजय होगा, ये श्री कृष्ण संकीर्तन करने से हमें क्या फल मिलेगा। चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त के दर्पण का मार्जन होगा। वैसे हमारा चित्त एक दर्पण के समान है, दर्पण मतलब आईना। जब आईने के ऊपर धूल रहता है तो हम अपने आप को देख नहीं सकते हैं आईने में, लेकिन जब हम कपड़ा लेकर उस आईने को साफ करेंगे तो जिस हद तक हमने उस कपड़े से धूल को निकाला है उस हद तक हम अपने आप को सही तरह से साफ साफ देख पाएंगे। अगर हमने थोड़े थोड़ा थोड़ा साफ किया तो उस हद तक हम अपने आप को नहीं देख सकेंगे। तो उसी प्रकार से जिस हद तक हमारे हृदय में ये अनर्थ हैं, उस हद तक हम अपने आप को पहचान नहीं पाएंगे। हम कौन हैं? हम शुद्ध आत्मा हैं। हमें शरीर से कुछ लेना देना नहीं है। न केवल हम अपने आप को सही तरह से पहचान पाएंगे और न ही हम भगवान श्री कृष्ण को हमारे हृदय में स्थित देख पाएंगे। लेकिन जैसे हम चित्त का मार्जन करेंगे हरिनाम संकीर्तन करके, कृष्ण संकीर्तन करके, तो वैसे वैसे वो मार्जन होते होते वास्तव में जो आत्म साक्षात्कार है, भगवत साक्षात्कार है, वो हो जाएगा और हृदय में हम भगवान को पहचान पाएंगे, भगवान का दर्शन कर पाएंगे, अपने स्वरूप को हम जान पाएंगे। कृष्णेर स्वरूप होए धीवर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। इस प्रकार से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताते हैं कि हमें ये चित्त का मार्जन करने के लिए हमें हरि नाम संकीर्तन करना चाहिए, भव महादावाग्नि निर्वापणम, जिससे कि हमारे हृदय में जो भौतिक कष्टों की अग्नि प्रज्वलित रूप से जल रही है वो मिट जाएगी। श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम, ऐसा हरिनाम संकीर्तन करने से परम श्रेय परम कल्याण जीव को प्राप्त हो सकता है। श्रेय कैरव चंद्रिका, वास्तव में जो असली भाग्य है उसका उदय हो सकता है और साथ साथ आनंदाम्बुधि वर्धनम, आनंद की अम्बुधि आनंद का सागर का वर्धन हो सकता है। पूर्णामृतास्वादनम, और हर एक पद में भगवान का नाम लेते लेते हमें आनंद मिल सकता है, दिव्य आनंद मिल सकता है। इसलिए परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि गुंडीचा का मार्जन की लीला, इसका मतलब है कि हमें हरिनाम बहुत ध्यान से लेना चाहिए। हरिनाम का उच्चारण बड़े ध्यान से लेंगे कीर्तन में जप में, तो हमारे हृदय भगवान को स्वीकार करने के लिए बिल्कुल योग्य स्थान हो जाएगा। नहीं तो हम भगवान को हृदय में निमंत्रण नहीं दे सकते। क्या जब आप किसी अतिथि को निमंत्रण देते हैं तो क्या आपका घर साफ नहीं करते हैं? मान लीजिए आपने किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति को बुलाया, कोई मंत्री या कोई बड़ा आदमी आपके घर में आ रहा है या कोई साधारण अतिथि भी आ रहा हो, तो क्या हम अपने घर को साफ नहीं रखेंगे? आप देखेंगे सब जो शिक्षा साफ करो, चलो सब कुछ ठीक ठाक होना चाहिए, पर्दे ठीक ठाक होने चाहिए, सब चीजें अपने अपने जगह में होनी चाहिए। तो जब अपने घर के लिए हम इतना सब ख्याल रखते हैं कि कोई अतिथि आने के पहले साफ होना चाहिए, तो जब भगवान को हमारे हृदय में आने के लिए हम निमंत्रण दे रहे हैं तो गंदे हृदय से क्या हम भगवान को स्वीकार बुला सकते हैं? नहीं। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं, अच्छी तरह से नाम संकीर्तन करो, फिर भगवान अवश्य हमारे हृदय में आएंगे। और चैतन्य महाप्रभु ये संदेश देना चाहते थे इस गुंडीचा मंदिर के मार्जन की लीला के माध्यम से। तो खैर, वहां चैतन्य महाप्रभु सभी भक्तों के संग बैठकर जगन्नाथ जी के महाप्रसाद का आनंद ले रहे थे, सेवन कर रहे थे प्रसाद का। और वहां पर भक्त लोग उस भाव विभोर होकर आपस में कृष्ण कथा कर रहे थे। उधर अद्वैत आचार्य और नित्यानंद प्रभु के बीच में हंसी मजाक शुरू हो गई। वैसे अद्वैत आचार्य नित्यानंद प्रभु आपस की टांग हमेशा खींचते थे, आपस की हमेशा हंसी मजाक उड़ाते थे, लेकिन इसकी नकल हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस हंसी मजाक में भी बहुत उपदेश होते थे हम सबके लिए। तो अद्वैत आचार्य कहने लगे कि अरे देखो, अरे मैं किसके पास में बैठा हूं, ये अवधूत है, न जाने इसका गोत्र क्या है, इसका परिवार क्या है, कहां से आया है, कौन से कुटुंब में इसका जन्म हुआ है, कौन सी जाति का है, न जाने कब ऐसे लोगों के पास में बैठकर हमें भोजन लेना पड़ता है, अशुद्ध हो जाते हैं, अब क्या करें। अब चैतन्य महाप्रभु तो सन्यासी हैं, सन्यासी को कौन क्या बोलेगा, वो तो कहां भी जाते हैं, कहां भी खाते हैं, कुछ भी करते हैं, उनका काम होता है भ्रमण करना और जहां भी भिक्षा मिलती है खा लेते हैं। लेकिन गृहस्थ ब्राह्मणों को तो बहुत सावधान रहना पड़ता है। गृहस्थ ब्राह्मण अगर सावधान नहीं रहेगा तो लोग उसकी निंदा करेंगे। लेकिन अभी पता नहीं हमारी क्या गति होगी, ऐसे लोगों के पास बैठकर हम ले रहे हैं प्रसाद। फिर नित्यानंद प्रभु और लौटकर फिर अद्वैत आचार्य का मजाक करने लगे, कहने लगे कि पता नहीं हमारी गति क्या होगी। अरे आपकी गति जो होगी सो होगी, लेकिन हमारी गति क्या होगी? हमारी गति यह है कि हम तो एक मायावादी के पास में बैठे हैं और चैतन्य महाप्रभु ने बताया है कि मायावादियों का संग करने से सब सत्यानाश हो जाता है, सर्वनाश हो जाता है। अभी मायावादी के पास में बैठने से चित्त हमारा कैसे बिगड़ जाएगा, कैसे मन टेढ़ा हो जाएगा, कुछ कहना मुश्किल है। और हम ऐसे मायावादी के पास में बैठे हैं, पता नहीं हमारा क्या होगा। तो इस प्रकार से दोनों आपस में मजाक कर रहे थे। चैतन्य महाप्रभु इस संवाद का आनंद ले रहे थे। प्रभुपाद जी बताते हैं कि इस संवाद में भी, हंसी मजाक में भी बहुत गहरा उपदेश है हम सबके लिए कि हमें देखना चाहिए कि हम कहां पर खा रहे हैं, कहां पर हम प्रसाद सेवन कर रहे हैं, किसका खाया हुआ हम बना रहे हैं। बहुत देखना चाहिए भक्तों को, और ये भी देखना चाहिए कि मायावादी लोगों का संग नहीं करना चाहिए। तो खैर, ऐसे जब हो गया, फिर वहां पर सभी लोग थोड़ा विश्राम करने लगे, फिर चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करने लगे थोड़ी देर, और फिर आगे चल के सभी लोग जगन्नाथ जी का दर्शन करने लगे। फिर उसके बाद में क्या हुआ और जगन्नाथ रथ यात्रा के समय किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने भगवान का दर्शन किया, कैसे कीर्तन किया इत्यादि, इसकी चर्चा कल सुबह होगी। श्री जगन्नाथ भगवान की, श्री चैतन्य महाप्रभु की, गौर प्रेमानंदे, मार्जन महोत्सव की जय। बोलते हैं, बात समझ में नहीं आई की लीला है, भगवान लीला करते हैं, लीला का आनंद हम सबको देने के लिए और खुद भी लीला का आनंद लूटने के लिए भगवान ये सब चीजें करते हैं। इसलिए भगवान को कोई बहाना चाहिए, कारण चाहिए कि 15 दिन किसी को दर्शन नहीं दें। अगर उनका अंगराग होना है, उनका नई पेंटिंग होना है, तो भक्तों को दर्शन नहीं हो सकता। तो दर्शन नहीं होगा तो कोई तो कारण होना चाहिए, नहीं तो भक्त लोग निराश हो जाएंगे। क्यों नहीं आ रहे हैं, बीमार पड़े, हाँ ठीक है ठीक है, फिर डिस्टर्ब मत करना, ठीक है आराम करने दो, ठीक ठाक होने दो, फिर जब आएंगे दर्शन लेंगे हम। जब चैतन्य महाप्रभु ये अनवसर के समय जब भगवान का दर्शन नहीं कर सकते थे, इतने दुखी हो जाते थे कि वो जगन्नाथपुरी में नहीं रह पाते, फिर वो अलालनाथ नाम के स्थान में जाते, वहां भी जगन्नाथ का मंदिर है, तो वहां पर वो जाते, जगन्नाथ जी का दर्शन करते, क्योंकि जगन्नाथ जी से विरह वो सहन नहीं कर सकते, नहीं कर पाते थे, इसलिए इस समय वो वहां पर जाके दर्शन करते। लंबे समय तक दिन में, रात में 3-4 घंटे ही बंद रहता है मंदिर, लेकिन अनवसर के समय 15 दिन पूरा जगन्नाथ जी दर्शन नहीं देते हैं, थक जाते हैं ना दर्शन दे देके, भक्त लोग आके बहुत सारी चीजें मांगते हैं, हमको ये दो, हमको वो दो, गाड़ी दो, बंगला दो, ये दो वो दो, वो भी हैरान हो जाते हैं, थोड़ा आराम तो दो हमको 15 दिन, फिर आराम करते हैं भगवान। हरे कृष्णा, श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय।